को किसने कैसे देखा, इससे पता चल जाता है कि वो मुतकब्बिर है कि नहीं। मिसाल के तौर पर आप मुझे देखकर मुस्कुराएं और मेरे माथे पे तीन बल स्टेबल रहें अपनी जगह पर, इसका मतलब है खुदा ना खास्ता कि मेरे अंदर किबर है, वरना मुस्कुराहट कंटेजियस होती है। मैं मुस्कुराऊंगी, आपको देखे आप सब मुस्कुराना शुरू कर देंगे, आप मुस्कुराएंगे मैं मुस्कुराना शुरू कर दूंगी। तो आज अपना टारगेट बनाएं, अभी भी रमज़ान के 4 दिन हैं, रमज़ान की बरकत से इंसान की नेकियां उसके अंदर परसिस्ट कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ मांगेगा हाथ उठाकर, अल्लाह इबादुर रहमान की पहली क्वालिटी मेरे अंदर ले आए। कभी कभी इंसान बहुत लंबे लंबे टारगेट अपने आप को देता है और अमल में कुछ भी नहीं लेकर आता, सिर्फ एक अमल अल्लाह की खशियत और बंदों के साथ मेरे अंदर कभी किबर ना आए। इंशाल्लाह आपके अंदर इबादुर रहमान की क्वालिटी आना शुरू हो जाएगी, इंशाल्लाह आपके अंदर खशियत आना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि मुतकब्बिर का पनाह गाह जो है वो जहन्नुम है। जब जहन्नुम मुतकब्बिर इंसान की पनाह गाह है तो जहन्नुम खुद बहुत मुतकब्बिर है, इसलिए गज़ब वाली और रेज वाली है। कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम खज़ानातुहा, जब कोई भी ग्रोह मैसिव ग्रोह उसमें डाला जाएगा ट्रैश की तरह, तो जो उनका गार्जियन होगा जो कीपर होगा वो सवाल करेगा, सा अलहुम खजानातुहा। ये जो खजानातु है ये खजाने से है, ये जमा है खजानातु खाजिन की, खाजिन कहते हैं खजाने की हिफाजत करने वाला, इस्मुल फाइल खाजिन, किसी वॉल्ट की भी हिफाजत करने वाला, प्रोटेक्शन करने वाला खाजिन। खजाना क्या होता है, ऑब्वियस होता है, छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है। तो अब जरा आप इसके अंदर गहराई देखें, एक वो जो दुनिया में बड़े मुतकब्बिर थे, दुनिया में अपने आप को बड़े इलीट लीडर और अपने आप को बड़ा फेम वाला समझते थे, मशहूर समझते थे, जब जहन्नुम में डाले जाएंगे अल्लाह की नाफरमानी की वजह से तो अननोन होंगे, अल्लाह ने उनको टाइटल ही फौजुन का अननोन दिया है। फिर जिस जहन्नुम में डाले जाएंगे, खजा नातुहा क्या बता रहा है, इट्स अ सीक्रेट चैम्बर, सीक्रेट प्रिजन, मजीद अननोन हो जाएंगे, कहाँ डाले जाएंगे पीछे कोई नहीं जानेगा, कैसी सजाओं में होंगे, खुद तकलीफ में होंगे, पीछे बचाने वाला कोई नहीं होगा जो इनकी आवाज़ों को सुनकर इनको बचा सके। तो अल्लाह ताला ने खजा नातू हा के अंदर स्कॉलर्स कहते हैं कि एक सीक्रेट प्रिजन का एक जो है वो एसेंस दिया है कि मजीद अल्लाह उनको दूर फेंक देगा। और ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के कलाम से अपने आप को दूर किया, ये वो लोग थे जिनको दीन पर बात करना या दीन की शरीयत पर अमल करना बीनीथ द डिग्निटी लगता था, ये वो लोग थे जिनके लिए दीन और शरीयत के अहकामात एक ट्रैप से एक फंदे से कम नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने दीन पर अमल करना जो था वो अपनी शान के ख़िलाफ़ समझा था, मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ये हुलिया नहीं अडॉप्ट कर सकती, मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं इतनी इबादत नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये करना ही पड़ता है। बास दफ़ा ख़वातीन, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो किसी जगह पर किसी मल्टीनेशनल में जॉब्स कर रही होती हैं या कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में होती हैं, जब उनको बताया जाता है कि नामहरम के साथ आपने हाथ नहीं मिलाना, तो वो कहती हैं मेरी मजबूरी है, नौकरी मेरी इस वक्त जो है वो मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है। अल्लाह को क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे, राज़िक नौकरी थी या राज़िक अल्लाह था? आप अल्लाह की खातिर एक दरवाज़ा बंद करते हैं कि इस दरवाजे से गुजर के अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, क्या हमारा ईमान नहीं है कि अल्लाह 10 दरवाज़े खोल देता है? इमाम इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी अपनी किताबों में लिखते हैं कि जब भी अल्लाह अपने बंदे के लिए किसी एक दरवाज़े को बंद करता है तो हमेशा अल्लाह 2 दरवाज़े रहमत के खोल भी देता है, सिर्फ डिपेंड करता है कि सुनने वाले का, देखने वाले का, उसको बर्दाश्त करने वाले का ईमान कितना बड़ा है, वरना रहमत के हमेशा 2 दरवाज़े अल्लाह साथ साथ खोलता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ उन लोगों को वाज़े किया है, ये वो लोग थे जिनके लिए दीन पर अमल करना बीनीथ द डिग्निटी था, एम्बेरस्ड मुस्लिम, अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल मुस्लिम कहने वाले, अपने आप को सो कॉल्ड मीडियम मुस्लिम कहने वाले, वो जिनको अपोलोजेटिक मुस्लिम बनना पसंद था, वो जिनके लिए इस्लाम सिर्फ रिलीजन के बॉक्स में एज अ इस्लाम काफ़ी था, उनकी बात है, अल्लाह उनको ऐसा गुमनाम कर देगा कि अब वो कम्प्लीटली अननोन हो जाएंगे, अब कोई उनको नहीं जानेगा। तो जो जहन्नुम के गेट कीपर्स होंगे वो उनसे सवाल करेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई वॉर्न करने वाला, खबरदार करने वाला नहीं आया था? इसको कहते हैं अरबी ज़ुबान में सुआलु तौबीग, यानी ये सवाल किया गया है एक, जिसको आप कहते हैं एक क्योरी के तौर पर, प्रिजन ओरिएंटेशन में जो बहुत सख्ती से येल करके बोला जाता है, कोई प्यार से नहीं पूछा जा रहा, हम पढ़ते हैं तिलावत करते हुए बहुत ही रिदम के साथ पढ़ते हैं, अलम यातिकुम नजीर, जहन्नम के फरिश्ते ऐसे नहीं पूछेंगे, दे विल लिटरली येल, शाउट करेंगे, गिलादुन शिदादुन सूरह तहरीम में आता है, बहुत सख्त हैं अपने लहजे में भी और अपने कामों में भी। अल्लाह ने उनको जो काम करने का कहा है वो बस वही काम करते हैं। आपको याद होगा जो फरिश्ता मालिक है, जो जहन्नम का गार्जियन है, वो मुस्कुराता नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि तमाम फरिश्तों ने मेराज पर मुझे मुस्कुरा कर सलाम किया सिवाय मालिक के, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था जब से जन्नत बनी है मालिक ने मुस्कुराना छोड़ दिया है, जहन्नम के फरिश्ते मुस्कुराते नहीं हैं। सो दे विल येल, चीख कर पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई वार्निंग देने वाला नहीं आया था। सूरह मुल्क की जो कंस्ट्रक्शन है, जो जुमलों की कंस्ट्रक्शन है, उसमें आपको हर लफ्ज़ के अंदर एक बहुत गहराई महसूस होती है। यकीनन जो लोग अरबी ज़ुबान समझते हैं उनको इस गहराई को समझ कर और मज़ा आता है। यहाँ आया है अलम यातिकुम नज़ीर, यातिकुम अरबी ज़ुबान में कहते हैं, इसको मैं आसान ज़ुबान में अगर आपको बताऊं, क्या तुम्हारे पास कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं आया था जिसने तुम्हारे दिल को इस कलाम के ज़रिए टच किया होता। यातिकुम, कोई एक भी नहीं आया था जिसने तुम्हारे दिल को टच किया होता अल्लाह के कलाम के ज़रिए, जिसने तुम्हें कोई वार्निंग दी होती, जिसने तुम्हारे लिए कोई अच्छी नसीहत की होती, क्या कोई एक भी ऐसा नहीं आया था। नज़ीर का लफ्ज़ आया है, दो अल्फाज आते हैं अरबी ज़ुबान में, एक आता है नज़ीर जो यहाँ आया है, एक आता है मुनज़िर, मीम नून ज़ाल रा, दोनों में फ़र्क क्या है। आप उर्दू का तर्जुमा दोनों का देखते हैं, नज़ीर खबरदार करने वाला, मुनज़िर खबरदार करने वाला, लेकिन जब अरबी के दो अल्फाज हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर दो अलग मफहूम हैं। मुनज़िर कौन होता है, जो आपको वार्न कर रहा है, जैसे इस वक्त अगर मैं आपको जहन्नुम की आयात के ज़रिए वार्निंग्स दे रही हूँ तो मैं मुनज़िर हो गई, खबरदार करने वाली, लेकिन जिस वक्त अब मैं आपसे क्लास ख़त्म करने के बाद बातें कर रही हूँ, अब भी मैं मुनज़िर हूँ नहीं, अब मैं मुनज़िर नहीं हूँ। मुनज़िर जिस वक्त सो रहा है, अब मैं सोती हूँ, उस वक्त भी नज़ीर की कैटेगरी में होती हूँ, मैं उस वक्त भी वार्निंग दे रही हूँ, आप कहें आपके चेहरे पर देख के ही डर लग रहा है। मुनज़िर जिस टाइम पर वार्निंग देगा सिर्फ उस टाइम पर वो वार्नर होगा, एज़ कम्पेयर टू नज़ीर, ये जो भी हमने बात की वो नज़ीर वाली सिचुएशन में होता है। नज़ीर ऐसा ख़बरदार करने वाला जो बोले तो वार्न करे, जो खामोश हो तो उसकी प्रेजेंस, उसकी पर्सनैलिटी आपके लिए वार्निंग बन जाए। ऐसे इंसान जिनकी प्रेजेंस में आपको अल्लाह याद आने लग जाए वो नज़ीर होते हैं। ऐसे इंसान जिनको देखकर आप अपना दुपट्टा ठीक करने लग जाएं, बाज़ ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं ना ख़वातीन, उनके आने से फ़ौरन सर पर दुपट्टा रख लेती हैं, पता नहीं बाज़ लोगों की वजह से सर पर दुपट्टा रखते हैं, क्यों रखते हैं पता नहीं। तो बाज़ लोगों की पर्सनैलिटी नज़ीर की होती है, वो ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आपको स्पीच देंगे, उनकी प्रेजेंस काफ़ी होती है इंसानों को नेकी की तरफ लाने के लिए। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है, मुनज़िर नहीं आया, नज़ीर आया है, यानी ये वो लोग होते हैं जिनकी माशरे में प्रेजेंस काफ़ी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत नज़ीर की शख्सियत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना लोगों को नेकियों के लिए मोटिवेट करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस लोगों को गुनाहों से दूर करने में हेल्प आउट करती थी। ये डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन मुनज़िर और नज़ीर, और अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही बात कही है, क्या तुम्हारे आसपास कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जिसने अल्लाह के कलाम के ज़रिए कभी तुम्हारे दिल को इम्पैक्ट किया हो, कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसकी वार्निंग से या जिसकी पर्सनैलिटी से कभी तुम्हें भी नेकी करने का ख्याल आया हो, कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके आसपास होने से तुम्हें महसूस हुआ हो कि हाँ वाकई मैं एक अच्छे इंसान नहीं हूँ। तो माशरे में हमेशा इस कैटेगरी के लोग होने चाहिए, नज़ीर की कैटेगरी के, ताकि उनकी वजह से, ज़रूरी नहीं होता ये जो नज़ीर की कैटेगरी के लोग होते हैं ये सिर्फ स्पीचेस देते रहें, ये स्पीकर्स हों। बाज़ औक़ात बाज़ लोग नज़ीर होते हैं बग़ैर किसी स्पीच और बग़ैर किसी स्पीकर बनने के, उनकी अखलाक, उनके किरदार, उनका मामला निभाना, उनकी प्रेजेंस ख़ानदान वालों के लिए और आसपास के लोगों के लिए नज़ीर उनको बना देती है। लोग उनसे अच्छी बातें कॉन्स्टेंटली सीखते हैं, लोग उनके अखलाक से कॉन्स्टेंटली अल्लाह और इस्लाम के करीब होते हैं, लोग उनके मामलात निभाने से कॉन्स्टेंटली अपने दीन के अंदर मज़ीद जम जाते हैं। तो यहाँ मेंशन किया गया कि तुम्हारे आसपास क्या कोई ऐसा शख्स नहीं था जो नज़ीर होता, जो नज़ीर की कैटेगरी में होता। एक चीज़ और याद रखिएगा, नज़ीर सिर्फ़ रसूल नहीं होते, नज़ीर हर वो शख्स है जो आपको अच्छी नसीहत करेगा, नज़ीर हर वो शख्स है जो आपको दीन के लिए इनक्रेज करेगा, नज़ीर हर वो शख्स है जो आपको इखलाक सिखाएगा। इसलिए मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि जो उस्ताद बनकर बैठा है सिर्फ वो नज़ीर है, आपके माँ बाप आपके लिए नज़ीर होते हैं। क़यामत के दिन जहाँ अल्लाह ताला जहन्नमियों से ये सवाल फरिश्तों के ज़रिए कराएंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई वॉर्न करने वाला नहीं आया था? औलाद होते हुए हम सोच लें, क्या तुम्हारे पास कोई अम्मी नहीं आई थी तुमको गाइड करती रहती बेटा ये काम गलत है? और ना प्रैक्टिकल नोट, कुरान की आयात को जब आप प्रैक्टिकल नोट पर लेकर आते हैं तो आपको चीज़ें फ़ौरन क्लिक करती हैं, आपको फ़ौरन समझ आता है हाँ दिस इज़ फॉर मी, वरना आप इसको एलिनेटेड होकर पढ़ते रहते हैं। आप कहते हैं हाँ किसी की बात है, हाँ जिसको जहन्नुम में डाला जाएगा, हाँ जिसके पास अल्लाह के रसूल आए थे, हाँ जिसने सहाबा की ज़ुबान से कुरान सुना था, नो दिस इज़ फॉर मी टू। जब जहन्नुम का फरिश्ता ये पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आए थे, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल के कंपेनियन नहीं आए थे, वहाँ पर ये 2019 में आने वाले तमाम इंसानों से जिन्होंने अल्लाह को पहचानने के बावजूद अपने अमल को दुरुस्त नहीं किया और खुदा ना खास्ता वो जहन्नुम के मुंह पर पहुँच गए जिसकी आवाज़ शहीकुन की कैटेगरी में आ रही होगी, उस वक्त उनसे पूछा जाएगा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या माँ भी नहीं थी घर में जो तुम्हें तमीज़ सिखाती, क्या बाप भी नहीं था जो तुम्हें नसीहत करता, क्या उस्ताद भी नहीं था, क्या कोई व्हाट्सएप ऑडियो नहीं थी दिस इज़ फॉर अस स्पेशली, क्या कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, क्या कोई वेबसाइट नहीं थी, क्या कोई किताब नहीं थी, क्या कोई ऐसी दोस्त नहीं थी जो तुम्हें एक अच्छा किसी किस्म का मशवरा या एडवाइस देती? इस नज़ीर की कैटेगरी में हर उस इंसान को रख लें जो आपको दीन की तरफ खींचना चाहता है, हर वो इंसान नज़ीर है। तो आज से अम्मा, जितनी अम्माएँ बैठी हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या हैं? नज़ीर। और बच्चों, अम्मा आपके लिए नज़ीर हैं। तो जब अम्मा कोई नसीहत करें तो अम्मा को कुछ जवाब देने से पहले ये जुमला सोच लेना सूरह मुल्क का कि फरिश्ते पूछेंगे जहन्नुम के पास पहुंच जाने वालों से अलम यातिकुम नज़ीर, अल्लाह की रहमत कि अल्लाह ने सरों पर माँ बाप रखे, अल्लाह की रहमत अल्लाह ने यतीम नहीं रखा हुआ, अल्लाह की रहमत अल्लाह ने नसीहत करने वाले नेक वालिदैन दिए हैं, उनकी कदर करें, माँ बाप की शक्ल में जन्नत के दरवाजे खुले हैं ज़िंदगी में, जब तक माँ बाप हयात हैं खिदमत करें, नसीहतें माने और जन्नत कमाएं और अल्लाह के करीब हो जाएं। आगे फरमाया आयत नंबर 9 में इसी कॉन्वर्सेशन को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, अब अहले जहन्नुम जो जहन्नुम के मुंह पर खड़े हैं फरिश्तों के जवाब के बाद कहेंगे कालू बला कद जा अना नज़ीर, हाँ हाँ क्यों नहीं, आया था हमारे पास खबरदार करने वाला, फकद्दबना हम ही ने झुटला दिया उसको, वकुलना और हमने कहा मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं नाजिल की, इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर, यकीनन तुम सब मैसिव कन्फ्यूजन का शिकार हो। तो ये जहन्नमियों की कॉन्वर्सेशन आ रही है जो वो फरिश्तों के साथ करेंगे। अभी आपको बताया फरिश्तों ने कोई बहुत ही प्यार और मोहब्बत से नहीं पूछा अलम यातिकुम नज़ीर, फरिश्तों की आवाज़ में क्या तेज़ी होगी, क्या लाइटनिंग इफ़ेक्ट होगा, क्या थंडर इफ़ेक्ट होगा, हम नहीं जानते। सिर्फ वो दो फरिश्ते जो हर इंसान को बहरहाल फेस करने हैं कि जब कब्र में दफना के जाया जाता है तो हर मोमिन हर काफिर हर मुनाफिक के लिए वो दो फरिश्ते एक ही फॉर्मेट पर आते हैं, जिनके लिए आता है कि वो दो फरिश्ते आते हैं हदीस में जिसका मफहूम आता है स्याह चेहरों वाले जिनकी आँखें नीली हैं और जिनकी आँखों के अंदर बिजली की कड़क और जिनकी आवाज़ के अंदर बादलों की गरज है, और जब उठाकर मुर्दे को बिठाते हैं और तीन सवाल करते हैं कि तुम्हारा दीन कौन क्या है, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम कौन लेकर आया। जब हर इंसान को मिलने वाले सवाल पूछने वाले कब्र में आने वाले दो फरिश्ते, उनकी कैफियत ये है जिनको बाज़ लोगों ने बाज़ अहादीस से मुनकर और नकीर कहा है। ऑथेंटिक अहादीस में ज़्यादातर आपको मुनकर और नकीर का नाम कम मिलता है, नहीं मिलता है, सिर्फ आता है दो फरिश्ते जो इंसान को उठाकर बिठा देंगे। जब इन फरिश्तों की सख्ती का ये आलम है तो जो जहन्नुम के फरिश्ते होंगे, सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में आता है अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन, बहुत सख्त जान फरिश्ते इसके ऊपर एज अ कीपर लगाए गए हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह की नाफरमानी बिल्कुल नहीं करते, वा यफअलूना मा युमरून, और वो वही करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। तो आप जहन्नुम के फरिश्तों के सामने जितना भी मासूम चेहरा बना लें, जितना भी गिड़गिड़ा लें, जितने भी आंसू बहा लें, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। और ये जहन्नमी वो होंगे जिससे ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, जिनके फैसले डिसाइड हो चुके हैं। अब जहन्नम इन पर लिख दी गई है, हिसाब किताब हो चुका, ये जहन्नम के मुंह पर खड़े हैं, एंट्रेंस पे खड़े हैं अंदर जाने के लिए। अपनी अपनी बारी में अंदर ट्रैश की तरह फेंक दिए जाएंगे, ये उनकी बात हो रही है। और जब ये सख्त फरिश्ते अपनी टोन में इनसे सवाल करेंगे, तो जब जवाब देने वाले इंसान क्रिमिनल जवाब देंगे, तो क्या टोन होगी हम अंदाज़ा कर सकते हैं। जब कहेंगे कालू बला कद जा अना नज़ीर, हाँ हाँ बिल्कुल हमारे पास आया था खबरदार करने वाला, फ़कत दबना, हमी ने झुटला दिया। दिस इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अगर इंसान के अंदर थोड़ा सा भी अपना ईमान जाग जाए, अगर इंसान के अंदर थोड़ा सा भी पॉजिटिव खौफ पैदा हो जाए, तो इंसान अपनी गलती को एडमिट करता है। अपनी गलती को एडमिट ना करने वाला मुतकब्बिर होता है, अपनी गलती को ना एडमिट करने वाला अपनी फितरत को छुपाने वाला होता है, अपनी गलती को ना एडमिट करने वाला अपने नफ्स की वर्शिप करने वाला होता है। हर इंसान अपने दिल में जानता है उसने कब गुनाह किया, उसने कहाँ गलती की और कहाँ वो गलती कर रहा है। दुनिया में इनको अक़ल नहीं आई थी, जहन्नुम देखकर सब अक़ल काम करना शुरू कर देगी। दुनिया में इन्होंने फितरत को दबाया था, आखिर में वो फितरत खुद ज़ुबान से सच निकलवाएगी। खुद कहेंगे फ़कज़्ज़बना, खुद कहेंगे क्यों नहीं, बला कद जाअना नज़ीर, हाँ हाँ बिल्कुल हमारे पास आया था। लेकिन अब इस मौके पर एडमिट करना, इस मौके पर एतराफ़ करना, इस मौके पर सॉरी बोलना फ़ायदा देगा? अब फ़ायदा नहीं देगा। सॉरी कहने के लिए अभी भी 5 दिन बाकी हैं, ये आखिरी दिन रमज़ान के, जाते जाते रमज़ान, पूरा साल सॉरी बोलें, जब दिल चाहे सॉरी बोलें, जिस वक्त गुनाह हो सॉरी बोलें। लेकिन बहरहाल अल्लाह के सामने अपने आमाल, अपनी तौबा, अपनी टूटी फूटी इबादत और अपनी दुआएं पेश करने के लिए ये बेहतरीन 5 दिन हैं। डोंट वेस्ट देम, डोंट वेस्ट देम। बास बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, बास बच्चों के पेपर्स ख़त्म हो गए हैं, बास बच्चों के पेपर्स में गैप्स हैं, बास बच्चों ने अपने ऊपर बड़ा अपने आप को जो है वो अफलातून समझा, हमने पेपर भी दिए और हमने रोज़े भी रखे, अब हमारे पास 15 दिन का गैप है, अम्मी मैं ये सीज़न देखूँगी, सीज़न 2 पूरा कम्प्लीट करूँगी। ये नहीं करना। ये 5 दिन इबादत के दिन हैं, ये 5 दिन माफ़ी मांगने के दिन हैं। क़यामत के दिन जहन्नुम देखकर एतराफ़ करना और उस वक्त एडमिट करना कि हाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं, वो फ़ायदा नहीं देगा। आज एडमिट करें, आज इस बात को मानें और अल्लाह के सामने ऐसी खशियत अल्लाह से मांगें कि आइंदा हमारे कदम कभी गुनाह की तरफ ना उठें। तो ये कहेंगे उस वक्त, पोर आउट करेंगे उस वक्त, चीख चीख कर बोलेंगे उस वक्त, जो है वो प्लीड करेंगे, कद जा अना नज़ीर, हाँ बिल्कुल हमारे पास नज़ीर आया था। आप कुरान के अल्फाज की खूबसूरती देखें। इब्ने आशूर अपनी तफसीर में लिखते हैं, वो कहते हैं सवाल किया गया था फरिश्तों से, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई नज़ीर नहीं आया था, कोई ऐसा बंदा आया होता जिसकी सिर्फ प्रेजेंस ने तुम्हारे दिल को टच किया होता, कोई ऐसा बंदा आया होता जिसने सिर्फ एक दफ़ा तुम्हें ऐसी नसीहत की होती, या अतिकुम के अंदर यह एसेंस है, एक दफ़ा ऐसी नसीहत की होती जो दिल पर लगी होती, दिस इज़ द एसेंस इन या अतिकुम। अलम या अतिकुम नज़ीर का जवाब इब्ने आशूर कहते हैं होना चाहिए था, ये लोग जवाब देते कद आताना नज़ीर, हाँ हाँ आया था हमारे पास नज़ीर, आताना नहीं आया, क्या आया आयत में, कद जाअना नज़ीर। Now there is a difference between आताना and जाना, दोनों में आने का मफहूम आ रहा है, लेकिन अरबी ज़ुबान में कोई भी दो अल्फाज एक दूसरे का परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होते, देर इज़ अ डिफरेंस। अल्लाह ताला ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो दो अलग अलग मफहूम हैं। अगर यहाँ पर आताना आता तो होता हाँ एक मरतबा कोई आया था बताने वाला, मगर ये कह रहे हैं जा आना। जा आ अरबी ज़ुबान में कहते हैं कालिमतु तदल्लु अलल मुबालिगा वल मुशक्का, यानी जो नज़ीर था उसने तो अपना हक अदा किया था, एक दफ़ा थोड़ी बताया था, कॉन्स्टेंटली बताते थे, बार बार वार्न करते थे, प्यार से समझाते थे, हिकमत से समझाते थे, खुलूस से समझाते थे। अब नज़ीर की जगह पर ज़रा अम्मा को रखें, बैठी हैं बच्चियाँ मेरे सामने, तो मुझे मजबूरी में बोल देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बच्चियाँ व्हाट्सएप पर सुनती भी हैं इसलिए मैं बोल देती हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है ना। जब आप इस तरह से सूरह मुल्क को समझते और पढ़ते हैं तो फिर आपको ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लगती है। जब आप इसको एलियनेटेड होकर सुनते और समझते हैं, तब आपको लगता है हाँ, एक कुरान की सूरत थी जिसको हमने समझा, और सिर्फ आपके लिए एक और मेरे लिए एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का बायस बन जाती है। इट्स नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, येट इट्स इट हैज़ द पावर ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, लेकिन ये मुझे और आपको इमोशनली कुरान के साथ अटैच करती है, ये मुझे और आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देती है। कह रहे हैं जा अना नदीर, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में दीन वाले मौलवी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, बुरखे वाली आंटियाँ जहर लगती थीं, जिनके लिए किसी को मौलवी कहना कॉम्प्लीमेंट नहीं होता था, क्रिटिसाइज करना गाली होता था, जिनके लिए किसी दाढ़ी वाले शख्स को देखकर बस लोग बिला वजह एग्जैजरेट करते हैं, फलां को देखा था उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी, भैया किसी की दाढ़ी उसके कहाँ तक आ सकती है, चेस्ट से नीचे तो नहीं जाएगी ना, बस लोग एग्जैजरेट करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, ये क्या चीज़ है। बस खुद माएँ अपने बेटों को कहती हैं ये कैसी दाढ़ी रख ली है, बकरा लग रहे हो, कांट इवन इमेजिन, और बेटे ने सुन्नत के अंदर सुन्नत को फॉलो करते हुए दाढ़ी रखी है। माएँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, दादियाँ होती हैं जो जवान बच्चियों के सरों से हिजाब खींच देती हैं, तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे, ये क्या बूढ़ी रूह बनकर बैठी हुई हो, क्या बन गई हो ये तुम, ये मिजाज घर के बड़ों के अगर बन जाए तो फिर अगली नस्ल सिरात पर पार लगेगी या सिरात से नीचे आग में गिरेगी और गिराएगी सबको। हम सबको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इमोशनली इस कुरान से अटैच कर रहा है। ये वो लोग थे जो इस वक्त एडमिट कर रहे हैं, जो इस वक्त एतराज़ कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं, जिनको दुनिया में मौलवी पसंद नहीं थे, जिनको मौलवी किसी को कहना आउट ऑफ कॉम्प्लीमेंट नहीं होता था, आउट ऑफ गुस्सा, रेज, गज़ब, आउट ऑफ गाली होता था, अपने दिल की भड़ास निकाल कर कहते थे, किसी खातून को हिजाब में देखकर, निकाब में देखकर उसको निंजा कहना, इसलिए कहा कि बहुत क्यूट लग रही है आपको, निंजा क्यों कहते हैं, बाज़ो हस्बैंड जो है उनको पता नहीं कौन सा फोबिया होता है, अगर तुम कोर्स करने गई तो तुम निंजा तो नहीं बनोगी, प्रॉमिस करो। ये वो लोग हैं जिनको दीन से एलर्जी थी दुनिया के अंदर, ये वो लोग हैं जिनको हर वक्त नसीहतें करने वाले लोग पसंद नहीं थे। मैंने कल एक बात कही थी, दिल नहीं चाहता है कि आप उसको कुफर से जोड़ें, लेकिन बहरहाल इतनी सख्ती दिलों को सख्त कर देती है। जब माएँ बार बार बच्चों को नसीहत करती हैं तो बच्चे माओं को शटअप करा देते हैं, ये कह के अम्मा आपका फिर लेक्चर शुरू हो गया, यहाँ तो लेक्चर लगता है और अम्मा को चुप कराने के लिए चार जुमले फ़ौरन बोल देते हैं। लेकिन ये सूरत क्या बता रही है, अब जहन्नम के मुंह पर खड़े होकर खुद कहेंगे जा अना नदीर, वो जो हमें दुनिया में अच्छे नहीं लगते थे अब खुद उनकी तारीफें कर रहे हैं, जिनके लिए दीन की बात वेस्ट ऑफ टाइम था, जिनका मिजाज ये था कि अच्छा इंसान बनने के लिए दीन एक एक्स्ट्रा चीज़ है, हम अच्छा इंसान बन गए हमें इसके लिए दीन की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्पिरिचुअलिटी का एक अपना एंगल है, आप हमें स्पिरिचुअलिटी का कोई तरीका मत बताएं। ये वो कौम, वो यूथ जिनके लिए कहा जाए बेटा दुआ मांग लो, हम आपको बताकर दुआ क्यों मांगे, ये भी कोई बात है, अम्मा कह रही है बेटा दुआ मांग लो, मैं आपको क्यों दिखाऊं मैं दुआ मांग रही हूँ, ये मिजाज ये सख्ती के मिजाज हैं, ये मिजाज ये दिलों के ऊपर क्रस्ट बना देते हैं, ये मिजाज इससे दिलों के अंदर कसवत आ जाती है, दिलों के आसपास जो है वो एक हार्ड शेल आ जाता है, और जो अंदर फितरत वाला नरम दिल है वो कहीं छुप जाता है। ये सब वो माइंडसेट है जो इस दुनिया का है, क़यामत के दिन एतराफ़ करेगा कि नहीं नहीं हमारे पास आए थे और बड़ी एफर्ट से पैगाम पहुंचाया था, जा अना में एसेंस है ऐसा नज़ीर, ऐसा ही वार्निंग देने वाला जो पीछे पड़ जाए आपके, जो मेहनत करे आपको अच्छी बात बताने के लिए, जो जान लगा दे आपको अच्छी बात समझाने के लिए, जो मेहनत कर करके आपको बार बार नसीहत करे, मोहब्बत से नसीहत करे, एक एंगल से समझना आए दूसरे एंगल से समझाए, एक बात समझना आए दूसरी बात की मोटिवेशन दिलाए। अब एडमिट करेंगे कि नई नई हमारे पास नज़ीर आया था और बड़ी मेहनत से उसने हमें बात बताई थी, ये तो हमारी गलती है, मसला हमारा था, फ़कद्दबना हम ही ने रिजेक्ट कर दिया। फ़कद्दबना के बाद आगे देखें आयत में आ रहा है जुमला व कुलना, फ़कद्दबना का मतलब होता है तो झुटलाया हमने, किसको झुटलाया, ये आया जब ये नहीं आया कि किसको झुटलाया, तो अरबी ज़ुबान का मिजाज क्या है कि जब मफूल भी ही नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो वहाँ पर तवस्सो होगी, वहाँ मानी ब्रॉड होंगे, यानी हर चीज़ को झुटलाया, اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، جنت اور جہنم کے ذکر کو بلٹل کیا، رسول کی تعلیمات کو معمولی سمجھا، نصیحت کو اپنے لیے بیکار سمجھا، اور زندگی میں دین کی اہمیت کو اپنے لیے بالکل کسی قسم کا کوئی ہائی پیڈسٹل نہ دیا۔ فکذبنا کے بعد یوں سمجھیں، اگر آبجیکٹ نہیں ہے تو فل ان دی بلینکس ہیں۔ سب کچھ کیا، آپ جو کچھ اس کے اندر فٹ کر سکتی ہیں وہ فٹ کر لیں، یعنی یہ اپنے گناہوں کی لسٹ اتنی لمبی خود بتا دیں گے کہ نذیر جب بھی آتا تھا وہ ان کے لیے ایک موقع ہوتا تھا کہ ذرا اپنی زندگی میں دوبارہ سے سوچیں، ری تھنک کریں، لیکن انہوں نے سوچنا دنیا میں پسند نہیں کیا۔ ہم اپنی مرضی کی اسپریچویلٹی کو مینٹین کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب جہنم کے منہ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو آخرت میں ان کو اپنا مقام نظر آ جائے گا۔ دنیا کے متکبر انسان اپنے کبر کے شیڈ کے اندر ہمیشہ دین سے دور جاتے ہیں۔ اگر آج ہمارا دل نہیں چاہتا مسلمان عورت بننے کا، اگر آج ہمارا دل نہیں چاہتا نمازیں پڑھنے کا، اگر ہمارا آج دل نہیں چاہتا اللہ کی بات سننے کا، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کبر ہے، اور کبر کو ہٹانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو اٹیچ کریں۔ کبر انسان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور تکبر کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تکبر جس کے دل میں ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، ایٹمز ویٹ کے برابر۔ اور کس نے اپنی آنکھ سے ایک ایٹم دیکھا ہے؟ کس نے اپنی آنکھ سے ایک ایٹم دیکھا ہے؟ تو اپنے آپ کو کانسٹنٹلی تکبر سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ شان نزول میں دیکھیں تو یہاں پر قریش موجود تھے جو اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھتے تھے، پبلک فگر تھے نا قریش کے، جتنے سردار تھے یہ بڑے پرومیننٹ تھے، حرم کے اندر، کعبہ کے پاس آس پاس رہنے والے، مکہ میں رہنے والے، ان کی عزت تھی، اس لیے کہ یہ کعبہ کے کسٹوڈین تھے۔ تو جب عزت ہوتی ہے، جب فیم ہوتا ہے، جب اللہ کوئی بڑی جاب، جب کوئی اللہ بڑا کاروبار دے دیتا ہے، جب اللہ زندگی کے اندر ایک مقام اور ایک سٹیٹس دے دیتا ہے، تب اللہ کا بندہ بن کر دکھانا یقیناً مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو بن جاتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا فیم عطا کرتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے، نعمتوں میں انسان زیادہ تر ہمیشہ نافرمانی میں گئے، نعمتوں میں انسانوں نے گناہوں کو ایڈاپٹ کیا، نعمت خالق سے دور کرتی ہے۔ ایک مٹھی بھر لوگ رہے ہمیشہ سے جو نعمتوں کے راستے سے اللہ کی طرف آئے، جنہوں نے اپنی نعمتوں کو اللہ کا قرب کا حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، ورنہ ہمیشہ سے نعمتیں انسانوں کو بگاڑتی رہیں۔ جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو نفس موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب ہر خواہش پلیٹ میں رکھ کے مل جاتی ہے تو پھر نفس کی قربانی دینے کا دل نہیں کرتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے، ہمارے پاس جنت کمانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ فرصت دیا اللہ نے ہمیں، وقت دیا اللہ نے ہمیں، صحت دیا اللہ نے ہمیں، بہت سے زندگی کے وہ کام ہم نہیں کرتے جو میجورٹی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے یہ کس لیے دی ہے؟ شاپنگ مالز میں یہاں سے وہاں جو ہے وہ مارے مارے پھرنے کے لیے، ہر وقت جو ہے وہ فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے، کبھی اس کے گھر تو کبھی اس کے گھر، کبھی اس بازار میں تو کبھی اس بازار میں، کبھی اس شاپنگ مال میں تو کبھی اس ریسٹورنٹ میں، بس اس لیے؟ کبھی کسی ایک یوٹیوب چینل کے اوپر ایک سیزن دیکھتے ہوئے، کبھی نیٹ فلکس پر، ابھی ایک نیا طریقہ شروع ہو گیا، میں نے نیٹ فلکس کی ممبر شپ خریدنی ہے تم میرے ساتھ شیئر کر لو، مطلب تم بھی گناہ میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اٹ از اسپریڈنگ لائک اے فائر۔ سب ینگ بچوں کو پتا ہے، امائیں شکل دیکھ رہی ہیں، ہاں نہیں کریں، اس لیے کہ آپ اپنا بھی گناہ کریں گے اور جس کو ساتھ میں شامل کیا اس کا گناہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ تو ایک گناہ نہیں ہوگا، ایوری گناہ ول بی ڈبل۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس نعمت کے اندر اپنا فرما بردار بنائے، نعمتوں کے اندر اللہ کا فرما بردار بنائے۔ جب درد ہو، جب چوٹ لگے، جب غم آئے، تب تو پلٹتا ہے انسان۔ اور قرآن نے کتنی مرتبہ یہ مزاج بنایا بتایا ہے کہ بڑے سے بڑا نافرمان جو اللہ سے دور بھاگتا ہے، اللہ ایک جھٹکا لگاتا ہے دنیا کی زندگی میں، وہ بھی اللہ کو پکار اٹھتا ہے، پھر جب اللہ اس کی پکار پر، کتنا رحمان ہے، زندگی بھر جس نے نافرمانی کی، ایک مشکل آئی اور اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اس کو اس مشکل سے نکال دیا، رحمان ہے نا، موقع تلاش کرتا ہے بندوں کو معاف کرنے کے۔ اس نے اس مشکل سے اس کو نکال دیا और जैसे ही मुश्किल से निकाला ये इंसान फिर अल्लाह से गाफिल हो गया। तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों की कदर करने वाला बनाए। हर नेमत का मतलब है जिम्मेदारी। इसलिए नेमत नहीं मिली हमें कि हम हैं ही इतने अच्छे, क्या हमारे पास